क्या बेहूदगी है ये, दूर हटो इनसे। राधिका ने चीखते हुए उस लड़की को अजय से दूर करना चाहा, पर अजय ने राधिका के हाथ को बड़ी ही बेरहमी से मरोड़ दिया। हाउ डेयर यू टू स्पीक टू हर लाइक दैट। उसकी आंखों में खून उतर आया था और राधिका की आंखों में आंसू। एक गैर लड़की के लिए वो उससे इस लहजे में बात कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की बीवी को तकलीफ पहुंचा रहा था। अजय राधिका को घूर ही रहा था कि वो लड़की मटकते हुए उसके पास आई और बड़ी ही अदा से साइड से अजय को हक करके उसके खुले सीने को अपनी हथेली से सहलाने लगी। उसने तीखी मुस्कान लबों पर सजाते हुए राधिका को ऐसे देखा मानो अजय की जिंदगी में उसे उसकी औकात दिखाकर मजाक उड़ा रही हो उसका और खुद पर इतरा रही थी। बेबी, ये लेडी कौन है? उस लड़की ने निया मासूम सी सूरत बनाकर अजय से सवाल किया। अजय ने राधिका के हाथ को झटक दिया, उस लड़की की कमर पर अपनी बांह लपेटी और उसे खुद से सटाते हुए उसके चेहरे को चूमने लगा। बीवी है मेरी, पर तुम मेरी जान हो, इस पर ध्यान मत दो, चलो हम हमारे बेडरूम में चलते हैं। अजय ने राधिका को पल भर घूरा, फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। जाते जाते उस लड़की ने विनिंग स्माइल देकर राधिका को चिढ़ा दिया था। अजय अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि गुस्से में भड़की राधिका दनादन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आपने तो कहा था कि छोड़ दिया आपने ये सब, फिर अब इस लड़की के साथ इस हालत में क्या कर रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसी हुई इसे यहाँ लाने की? ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ लेकर आऊँ, जो चाहे करूँ। तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? अजय ने गुस्से में दांत किटकिटाए। उसका ये सवाल सुनकर राधिका ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। बीवी हूँ मैं आपकी। बीवी? अजय ने उपेक्षा भरी नज़र उस पर डाली और व्यंग्य भरी तीखी मुस्कान उसके लबों पर ठहर गई। कैसी बीवी और कौन सी बीवी? वही बीवी जो मेरी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाती, मुझे खुश नहीं रख पाती। तुम मेरी बीवी बनने के लायक भी हो? ऐसा है ही क्या तुम में कि मैं तुम्हें चाहूँ? तुमसे बेहतर तो ये है, कितना खुश रखती है मुझे। इसे पता है कि मुझे सेटिस्फाई कैसे करना है, खुश कैसे रखना है और कैसे मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। जो तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए वो सब तो ये करती है, और इसमें जो बात है वो तुम में नहीं। अब से ये यहाँ मेरे साथ रहेगी, तुम पड़ी रहना इस घर में किसी कोने में, और ना रहना चाहो तो दरवाज़ा खुला है, चली जाओ मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से। इतना गुरूर था ना उसे खुद पर, वही घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। उस पर शराब का नशा, राधिका को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा था उसने। उसके अब तक के त्याग, कुर्बानियों, समझौतों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था उसने, वो भी एक गैर लड़की के सामने। आप मेरे रहते अपनी रखेल को इस घर में रखेंगे और मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? राधिका ने बेबसी से उसे देखते हुए सवाल किया, जिस पर अजय का अहंकार से भरा जवाब आया। मैं मर्द हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ मुझे किसको रखना है और किसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हटो हमारे सामने से। तुम्हारा बदसूरत मनहूस चेहरा देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। अजय ने हिकारत भरी नज़रों से उसे घूरते हुए शराब के नशे में इतनी जोर से धक्का मारा कि राधिका, जो उसके इस व्यवहार से शॉक्ड थी, वो संभल ना सकी और मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से निकली चीख सुनकर घर की दीवारें तक कांप गईं। कोई कुछ समझ पाता या अजय उसे संभाल पाता, उससे पहले राधिका फर्श पर जा गिरी। देखते ही देखते उसकी साड़ी खून से सन गई और फर्श लहूलुहान हो गया। अपने पेट को पकड़े वो दर्द से तड़प उठी। शोर सुनकर सब बाहर निकले। फर्श पर गिरी खून से लथपथ राधिका को देखकर कोमल के मुंह से चीख निकल गई। ललिता जी घबरा कर उसकी ओर दौड़ी। अजय पर तो दोनों में से किसी की नज़र गई ही नहीं, जो शॉक्ड सा खड़ा था। उसका सारा नशा तो खून और दर्द से तड़पती राधिका को देखते ही उतर गया था, और उसके साथ खड़ी लड़की की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। घबराहट और डर के मारे उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और वो पहली फुर्सत में वहां से गायब हो गई थी। पर अजय के पिता उसकी और अजय की हालत देखकर बहुत कुछ समझ गए थे, लेकिन अभी उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आनन फानन में राधिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जैसा कि उम्मीद थी, बच्चा इस हादसे में मर गया था, उसका मिसकैरेज हो गया था। सारी रात वो लोग हॉस्पिटल में रुके। कोमल बहुत घबराई हुई थी, ललिता जी दुखी थी, और उनके पति परमेश्वर एक तरफ सर झुकाए खड़े अजय को गुस्से भरी नज़रों से घूर रहे थे। सुबह हुई तो ललिता जी को छोड़कर सब लोग घर चले गए। राधिका को होश शाम को जाकर आया। खून ज्यादा बह जाने के कारण उसमें कमजोरी आ गई थी। ललिता जी उसके साथ ही थी और राधिका एकदम खामोश थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके मन में क्या चल रहा था बस वही जान रही थी। भैया भाभी भी आए थे उससे मिलने, पर उसने किसी से कोई बात नहीं थी। चुप सी बैठी शून्य में ताकती रही। पता था उसे कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं, पर उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला था। अजय रात को आया और शर्मिंदा सा उसके पास खड़ा हो गया, पर राधिका ने नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं। सॉरी, मैं नशे में था, सफाई देने आया था वो। पर जैसे ही राधिका की कहर बरपाती सूर्ख निगाहें उस पर पड़ी, वो एकदम से चुप हो गया।
राधिका के लब हिले और अब जाकर उसने अपनी खामोशी तोड़ी। इस रिश्ते की एक आखिरी कड़ी थी वो बच्चा जिसने मुझे आपसे जोड़ा हुआ था और जिसके कारण अब तक मैं आपके घर और जिंदगी में थी। अपने ही हाथों आपने उस कड़ी को तोड़कर मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया। आज आपके कारण सिर्फ मैंने अपना बच्चा नहीं खोया है, बल्कि आपने भी अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। बस इतना ही कहा था उसने और चंद शब्दों में बहुत कुछ जता गई थी उसे। उसका लहजा कठोर और आत्मविश्वास से भरा था। अपनी बात कहकर वो मुंह फेर कर लेट गई और बेरुखी भरे स्वर में बोली, मुझे आराम करना है तो यहाँ से जा सकते हैं आप, और दोबारा यहाँ आने का कष्ट मत उठाइएगा। अपना कीमती वक्त उस लड़की के साथ बिताइए जिससे मोहब्बत है आपको और जिसे लेकर कल आप घर पहुँच गए थे, जिसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए तैयार थे। उसी के लायक हैं आप। मैं तो कभी आपके काबिल थी ही नहीं और अब आप मेरे काबिल नहीं हैं। अपनी इंसल्ट करवा कर अजय वहाँ से जा चुका था। राधिका ने हथेली अपने पेट पर रखी। आंखों से आंसू का एक बूंद आज़ाद होकर पिलों में समा गया, पर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अपने दिल को मजबूत किया और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ये सोचकर संतोष कर लिया। राधिका डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। तन पर लगे घाव भर चुके थे, पर मन पर लगा घाव नासूर बन चुका था। बहुत कुछ बदल गया था इस वक्त में। अजीब सी खामोशी अख्तियार कर ली थी उसने। अपने घर वालों तक से मिलने से इनकार कर दिया था। यंत्रचालित गुड़िया जैसी बन गई थी जिसमें कोई भावना शेष नहीं रही थी। कोई खुशी, उमंग, उत्साह नहीं था। दुख दर्द सबसे बहुत ऊपर उठ गई थी वो। अब किसी बात का कोई असर नहीं होता था उस पर। उसे तो जैसे अब कुछ महसूस ही नहीं होता था। निर्मोही बन गई थी। खुश तो पहले ही नहीं रहती थी, पर अब चौबीसों घंटे चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई रहती थी। अपना दर्द किसी से बांटा भी कहाँ था उसने, बस अंदर ही अंदर खुटती जा रही थी। अजय का कमरा छोड़कर कोमल के साथ सोने लगी थी। अजय को वो अपने पास भी नहीं आने देती थी। छूना तो दूर उसकी ओर नज़र उठाकर देखती तक नहीं थी, बात तक नहीं करती थी। उसका तो जैसे वजूद ही खत्म हो गया था, जबकि अजय उससे बात करने, उसके करीब जाने के मौके तलाश करता था। पर कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और राधिका की वो हद पार हो चुकी थी।
अजय दिल में तो कभी था ही नहीं, अब नज़रों से भी उतर चुका था। वो कहते हैं ना, एक औरत के लिए चुप्पी साधना सबसे आखिरी पड़ाव है। वो पहले लड़ती झगड़ती है, गुस्सा करती है, नाराज होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, और जब इन सब से हार जाती है, सारी उम्मीद टूट जाती है और वो गिव अप कर देती है, तो वो चुप्पी साध जाती है। फिर उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो उस पत्थर जैसी है जिस पर आप कितना ही अपना सर फोड़ लो, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पत्थर में कोई भावना नहीं होती, बस मजबूती होती है, और उसी मजबूती से वो औरत खड़ी होती है जिसमें कोई एहसास बाकी नहीं होते। सही ही कहा था उस दिन, सिर्फ उसका बच्चा नहीं मरा था, उसके साथ ही मरी थी उसके अंदर की माँ, पत्नी, बहू और बेटी। उस दिन उसके अंदर की सभी भावनाएं, उम्मीदें भी खत्म हो गई थीं। पता नहीं इस मरे हुए रिश्ते की अर्थी को क्यों ढो रही थी वो, और क्या चल रहा था उसके मन में। सुबह का वक्त था। राधिका अपने ससुर को चाय देकर वापस जा रही थी जब उसके कानों में उनके शब्द पड़े। समझाओ बहू को, ऐसे करने से जिंदगी नहीं कटेगी। जो होना था हो गया, अब उसे भुलाकर आगे बढ़े, अपने और अजय के रिश्ते पर ध्यान दे, वरना अगर फिर से उसके कदम बहक गए तो सारी जिंदगी आंसू बहाती रहेंगी। ललिता जी जहां उन्हें अविश्वास से ताकती ही रह गईं, वहीं राधिका के भावहीन चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। वो वहां से सीधे कमरे में आईं और भाभी को फ़ोन लगा दिया। हेलो राधिका, कैसी हो तुम? मालती भाभी की हैरानी और खुशी से मिली जुली आवाज़ आई। उनके स्वर में अपनेपन का एहसास था, जिसे महसूस करती हुई राधिका के चेहरे के कठोर भाव कुछ कोमल हुए। भाभी, मैं आपसे एक मदद मांगूं, आप बिना किसी को कुछ बताए मेरी मदद करेंगी? राधिका ने सीधे ही मुद्दे की बात की और उसका गंभीर लहजा देखकर मालती भाभी भी सीरियस हो गईं। हाँ बोलो ना राधिका, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? भाभी, किसी अच्छे से वकील से मेरी बात करवा दीजिए जो मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दिला दे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं अजय से डिवोर्स चाहती हूँ, पर यह भी जानती हूँ कि वो मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि मेरा उन्हें छोड़कर जाना उनके अहम को चोट पहुँचाना होगा जो वो कभी नहीं होने देंगे। तो कोई ऐसा वकील ढूंढिए जो मुझे कैसे भी करके इस रिश्ते से आज़ादी दिला दे, बदले में उसकी जितनी फ़ीस होगी मैं देने को तैयार हूँ। भाभी पहले तो चिंतित थीं, पर राधिका का फ़ैसला सुनकर उनके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। फाइनली तुमने अपने बारे में सोचते हुए एक सही फ़ैसला लिया। तुम्हें तो बहुत पहले ही अजय से डिवोर्स ले लेना चाहिए था। जिस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं, जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रिश्ता निभाना अपने साथ अन्याय करना होता है, और उस पर अजय जैसे टॉक्सिक और अभिमानी आदमी के साथ एक तरफा रिश्ता निभाना तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद करने जैसा है।
खैर देर से ही सही, पर तुमने अपने बारे में सोचा है और अब सही दिशा में कदम बढ़ाने जा रही हो, तो अब कुछ भी हो जाए अपने फैसले को बदलने मत देना। मैं जानती हूँ एक दो वकील को और बात करती हूँ उनसे। फीस की चिंता तुम मत करो। अगर मैंने पहले तुम्हें अजय के नेचर और उसकी बुरी आदतों के बारे में बताया होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी उसके हाथों बर्बाद नहीं होती। मैं अपनी इस गलती के लिए आज तक पछताती हूँ, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दिलाना मेरा प्रायश्चित होगा। शायद इससे मेरा गिल्ट कुछ कम हो जाए। बस जब तक हम तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दिलाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, तुम अजय को इस बात की भनक भी मत लगने देना और उसी घर में रहना। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू भाभी। राधिका दिल से उनकी बहुत आभारी थी। शादी के बाद अगर किसी से वो अपना दुख बांट सकी थी और किसी ने उसके दर्द को समझा था तो वो भाभी ही थी। वो इकलौती इंसान थी जो उसे सहने और समझौते करने नहीं कहती थी, राधिका को जज नहीं करती थी, और राधिका उनसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेती थी। राधिका यही सब सोचने लगी थी जब भाभी के आगे के शब्द उसके कानों से टकराए। राधिका, तुमने कुछ सोचा है कि डिवोर्स के बाद क्या करोगी और कहाँ जाओगी? क्योंकि तुम तो कहती हो कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहनों की जिंदगी की फिक्र है, इसलिए वो हमेशा तुम्हें इस रिश्ते को निभाने की ही सलाह देती हैं, तो वो डिवोर्स के लिए राजी नहीं होंगी। और अजय ने तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी जो तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर बिना किसी के सहारे अकेले जिंदगी बिता सको। भाभी की बात सुनकर राधिका के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। नहीं भाभी, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, पर कुछ पैसे हैं मेरे पास। अगर मेरे घर में मुझे जगह नहीं मिली तो कुछ वक्त तक अपना गुजारा कर लूंगी, कोई काम ढूंढ लूंगी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी। मुश्किल होगा पर अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। रास्ते कितने ही कठिन हो अपनी मंजिल पाकर रहूंगी। अपने अधूरे सपने को पूरा करके अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। गुड, बस अब इसी कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती रहो। अपने हौसले बुलंद रखो और हिम्मत के साथ इन परिस्थितियों का सामना करो। और खुद को अकेला तो बिल्कुल मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम अजय से अपना रिश्ता खत्म करने वाली हो, पर मुझसे और विजय से तुम्हारा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। राधिका ने हामी भरी और किसी की आहट पाकर झट से फोन काट दिया। टू बी कंटिन्यूड। कौन आया है? क्या राधिका जो चाहती है कर पाएगी? अजय इतनी आसानी से उसे छोड़ देगा?